शाम धीरे धीरे उतर रही थी। होटल में चारों तरफ रोशनी जगमगाने लगी थी। हर कमरे से शोरगुल, हंसी और तैयारियों की आवाज़ें आ रही थीं। रुचिका शेखावत और सुधीर मेहरा की सगाई थी। हालांकि दोनों के चेहरों पर कोई चमक नहीं थी, दोनों ही बहुत सपाट ढंग से तैयार हो रहे थे, जैसे किसी मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा हो। रुचिका आईने के सामने बैठी थी, पर उसकी आंखों में ना कोई चमक थी और ना ही कोई उत्साह। सुधीर भी अपने कमरे में एकदम अनमनी ढंग से तैयार हो रहा था। ये साफ झलक रहा था कि इस रिश्ते में दोनों की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, मगर परिवार का दबाव था, रस्में थीं और उन्हीं रस्मों को निभाने के लिए दोनों ने खुद को तैयार कर लिया था। घर की औरतें एक दूसरे के गहनों और साड़ियों की तारीफों में बिजी थीं, तो मर्द अपने सूट और शेरवानियों को व्यवस्थित करने में लगे थे। हर किसी के चेहरे पर काम और भागदौड़ का तनाव था। उधर शेखर और उसकी टीम ने अपना बड़ा काम पूरा कर लिया था। हॉल और लॉन का डेकोरेशन हो चुका था। गुलाब और गेंदा की मालाओं से सजी दीवारें, चमचमाती लाइट्स। उनकी टीम का बोझ थोड़ा कम हुआ तो अब उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर था, खाने पीने की सर्विस। वे सब अलग अलग ड्रेस पहने हुए थे ताकि मेहमानों के बीच साफ पहचाने जा सकें। हर किसी की अपनी ड्यूटी बांटी गई थी। इसी बीच ऊपर के कमरे में मानवी अपनी बेटी अवनी से समझा रही थी। बेटा, तुम खाना खाकर ऊपर वाले कमरे में चली जाना, वहाँ एक आंटी होंगी, वो तुम्हारे पास रहेंगी, तुम वहाँ आराम से सो जाना। पर अवनी अपनी ही धुन में थी। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं माँ, मुझे नहीं जाना कमरे में, मुझे भी सगाई का इन्विटेशन मिला है, जब सब नीचे जाएंगे तो मैं क्यों कमरे में बंद रहूं, मुझे भी सबके साथ जाना है। मानवी ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की, बेटा वहाँ बहुत भीड़ होगी, तुम अभी छोटी हो, थक जाओगी। मगर अवनी जिद पर अड़ी रही, उसकी आंखों में मासूम सी चमक थी। नहीं माँ, आपने ही तो कहा था मुझे बुलाया गया है, तो मैं भी सगाई में रहूंगी, मैं सबको देखना चाहती हूँ, प्लीज। मानवी ने बेटी को प्यार से गले लगाया, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता झलक गई। उसे मालूम था कि अवनी की जिद इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। रीता, जो पिछले 5 सालों से मानवी और अवनी के साथ रह रही थी, अवनी की हर आदत को अच्छे से जानती थी। उसने मानवी को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो ठीक है, ले आओ इसे, तुम खुद जानती हो इसकी जिद कितनी बुरी है और इसका गुस्सा उससे भी बड़ा, अगर इसे मना किया तो फिर पूरी शाम नखरे ही करेगी। रीता का अंदाज बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने धीरे से मानवी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, और फिर तुम डरती क्यों हो, मेरी बात मानो, इसे साथ ले चलो, मैं देख लूंगी इसे, वैसे भी सगाई में हमें बस उन लोगों पर नज़र रखनी है जो सर्विस करेंगे, हमारा काम तो उतना भारी नहीं है, मैं इसका बिल्कुल ध्यान रखूंगी। मानवी ने गहरी सांस ली, वो जानती थी रीता गलत नहीं कह रही। अवनी की जिद और उसके तेवर संभालना हर किसी के बस की बात नहीं थी, मगर रीता हमेशा उसे अच्छे से संभाल लेती थी। ठीक है, मानवी ने आखिरकार मान लिया। अवनी ये सुनते ही खिलखिला उठी, उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। माँ, मैं सच में सगाई में जाऊंगी, ये, मानवी ने उसे प्यार से गोद में लेकर कहा। हाँ, मगर शर्त यह है कि तुम वहां शरारत नहीं करोगी, सबके सामने अच्छे से बैठोगी। अवनी ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे वो वादा कर रही हो कि वो बिल्कुल परफेक्ट बच्ची बनेगी। फिर मानवी ने उसकी अलमारी खोली और उसमें से एक खूबसूरत गुलाबी फ्रॉक निकाली, जिस पर छोटे छोटे मोती जड़े थे। अवनी की आंखें चमक उठी। वाह माँ, ये वाली, मैं परी लगूंगी इसमें, मानवी ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, मेरी बेटी तो पहले से ही परी है, रीता ने भी बीच में कहा। देख लेना मानवी, आज ये सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेगी। मानवी ने बड़े प्यार से अवनी को तैयार किया, बालों में हल्की सी क्लिप, पैरों में छोटी सी सैंडल और होंठों पर मुस्कान। जब वो पूरी तरह तैयार हो गई तो सचमुच लग रहा था जैसे छोटी सी गुड़िया हो। रीता ने ताली बजाते हुए कहा, बस अब हमारी राजकुमारी बिल्कुल रेडी है। अवनी ने शीशे के सामने घूमकर खुद को देखा और बोली, अब मैं भी सगाई में सबको हाई करूंगी। मानवी ने रीता की तरफ देखा, उसकी आंखों में अब भी थोड़ी चिंता थी, मगर उसने दिल ही दिल में सोचा, शायद बेटी की जिद पूरी कर देने से शाम शांति से निकल जाएगी। शाम का समय होते ही होटल के लॉन में रोशनी और रौनक बढ़ने लगी थी। मानवी की असली चिंता अब भी वही थी, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अवनी की नज़र कभी वेद पर पड़े। अवनी इतनी मासूम और ज़िद्दी थी कि उसे किसी भी बात के लिए मनाना आसान नहीं था, और मानवी, जो खुद अंदर से बहुत भारी मन के साथ इस घर में मौजूद थी, के पास कोई और चारा नहीं था। वो अपनी बेटी को अकेले कमरे में नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए उसे साथ ही लेकर सगाई के हॉल में पहुंची। उधर गेस्ट का आना लगभग शुरू हो चुका था। आधे से ज़्यादा मेहमान हवेली के विशाल दरबार हॉल में पहुंच चुके थे। हर तरफ हंसी मजाक, गहनों की खनक और म्यूजिक की आवाजें गूंज रही थीं। घर के बड़े बलवंत मेहरा, ब्रजेश मेहरा और उनके छोटे भाई सब मिलकर मेहमानों का स्वागत करने में लगे हुए थे। महिलाओं में शाही अंदाज झलक रहा था। किसी ने रेशमी साड़ियां पहनी थीं तो किसी ने भारी जरी का लहंगा। प्रोग्राम की रौनक देखते ही बन रही थी। शेखावत फैमिली भी पहुंच चुकी थी। दोनों परिवार एक दूसरे के साथ मिलकर मेहमानों को रिसीव कर रहे थे, मगर घर के नौजवान अब तक नजर नहीं आए थे। सबकी नज़र उसी पल पर टिकी थी और तभी सीढ़ियों से एक साथ चारों भाई हॉल में दाखिल हुए। वेद मेहरा, दीपक मेहरा, सुधांशु मेहरा और सुधीर मेहरा। चारों ने अपने अपने अंदाज में शेरवानी पहनी थी और जब वे एक साथ हॉल में उतरे तो जैसे पूरे महफिल की नजरें थम गईं। उनकी शख्सियत, उनका आत्मविश्वास और उनका रॉयल अंदाज देखकर हर कोई ठिठक गया। खासकर वेद की चाल, उसकी आंखों का गुरूर, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान, ऐसा लगता था जैसे वो किसी भी महफिल पर अपना जादू बिखेर सकता है। युवतियों की नजरें बार बार उनकी तरफ खिंच रही थीं। कई तो धीरे धीरे एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने लगीं, देखो कितने डैशिंग लग रहे हैं ना। इसी बीच माहौल में और भी चमक तबाई जब किया और सिया हॉल में दाखिल हुई। किया ने गहरे नीले रंग का गाउन पहना था जिसकी डीप नेकलाइन सबका ध्यान खींच रही थी। वो बेहद ग्लैमरस और आधुनिक लग रही थी। वहीं सिया ने हल्के लैवेंडर रंग का गाउन पहना था जो सादगी के साथ साथ उसकी खूबसूरती को और निखार रहा था। उसकी ड्रेस उसके पूरे बदन को ढक रही थी, मगर उसकी शालीनता और मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया। लोगों के बीच हल्की चर्चा चलने लगी, किया बहुत हॉट लग रही है। हाँ, लेकिन सिया में जो नज़ाकत और शालीनता है वो किसी और में कहाँ। महफिल का शोर अपने चरम पर था तभी सबसे पीछे से वेदांत मेहरा ने एंट्री ली। वो हमेशा की तरह बेहद प्रभावशाली और रॉयल लग रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। दोनों का साथ आना आज जरूरी था क्योंकि पूरे परिवार की नजरें उन पर थीं। रीना ने गहरे मरून रंग की साड़ी पहनी थी और उसकी मौजूदगी वेदांत के व्यक्तित्व को और भव्य बना रही थी। वेद ने महफिल में कदम रखते ही एक पल के लिए हॉल को निहारा। उसकी नजरें तेज, पैनी और कुछ ढूंढने वाली थीं। तभी उसकी आंखें दूर खड़ी माया और रैना पर पड़ी। बस एक पल के लिए आंखों आंखों में इशारा हुआ और समझ में आ गया कि आज वही रात है जब वेद के खिलाफ प्लान शुरू होना चाहिए। हॉल में अब और भी मेहमान पहुंचने लगे थे। नावेद राजा खान की फैमिली पहले ही आ चुकी थी। उनकी जोया ने सफेद रंग का लहंगा पहना हुआ था। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि कई लड़कियों की नजरें उसके गहनों और स्टाइल पर टिक गईं। उसके साथ सारा, जारा और फिजा भी थे। वे चारों एक टेबल पर बैठकर हंसी मजाक कर रही थीं। आर्यन राजवंश को भी इन्विटेशन मिला था मगर वो नहीं आया। हाँ, जगत राठौर अपनी पत्नी अनन्या और बेटे जय राठौर के साथ पार्टी में पहुंचे। अनन्या ने खूबसूरत सुनहरी साड़ी पहनी थी। आखिर में सबकी नजरें उस पल पर टिकी जब रुचिका ने एंट्री ली।
वो अपनी माँ और दादी के साथ आई थी। लाल रंग का लहंगा उसके ऊपर किसी रानी की तरह लग रहा था। उसकी खूबसूरती देखते ही सबकी सांसें थम गईं, मगर उसकी आंखों में वही अजीब सी उदासी थी। चेहरा चमक रहा था मगर दिल कहीं और अटका था। महफिल अब अपने पूरे शबाब पर थी। क्या आज की इस पार्टी में वेद को ये सच पता चल जाएगा कि अवनी उसकी बेटी है? और क्या वेदांत मेहरा अपनी चालाक साजिशों में सफल होगा या उसी के खिलाफ बुना गया जाल उस पर हावी हो जाएगा?